शाम के लगभग 7 बज रहे थे। ओबरॉय मेंशन में आयु और आरव की एंगेजमेंट सेरेमनी थी, जहां कुछ खास मेहमानों को ही इनवाइट किया गया था। इन सब के बीच गौरवी जी, आरव और कबीर पहुंचे। आरव ने आयु की ड्रेस से मैच करता इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहन रखा था। आरव ने सगाई में शामिल होने के लिए साक्षी और मंथन को भी अपनी तरफ से इनवाइट किया था, तो वहीं अयान और आयशा भी सगाई में शामिल होने के लिए आए थे, उन्हें आयु ने इनवाइट किया था। आरव आयु के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। वो अपनी वॉच में टाइम देखते हुए बोला, ये तो हमेशा टाइम से आती है, फिर आज इतनी देर क्यों लगा रही है? आरव की बेसब्री देखकर अयान हंसकर बोला, भाई ये तैयार होने में इतना ही टाइम लगाती है, अब आप आदत डाल लीजिए। हाँ, अब तो हर एक चीज़ की आदत डालनी होगी, उसके लेट आने से लेकर उसके गुस्सा करने तक की, आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। एंगेजमेंट के लिए गार्डन एरिया को डेकोरेट किया गया था, तभी अचानक आरव को कुछ याद आया। उस दिन अनुष्का की कंडोलेंस सेरेमनी में आरव जिससे टकराया वो आयु ही थी। आरव ने अपने मन में कहा, तो वो उस दिन आयु थी, लेकिन उसने मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया? आरव अपने ख्यालों में खोया था, तभी सामने गार्डन के एंट्रेंस से आयु सिमरन और रुद्र के साथ एंगेजमेंट के लिए आई। आरव ने जब उसे देखा तो उसकी नज़रें उस पर थम सी गई थीं। पेस्टल साइन कलर के इवनिंग गाउन में आयु बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। उसने अपने बालों को कर्ल करके मैसी बन बनाया हुआ था, जिसे डायमंड क्लिप से एक्सेसराइज किया हुआ था। साथ में लाइट रियल डायमंड ज्वेलरी और लाइट मेकअप उसके लुक को परफेक्ट बना रहा था। आरव के अलावा कोई और भी था जो आयु को खोई हुई नज़रों से देख रहा था, वो मंथन था। साक्षी उसके पास खड़ी थी और उसने मंथन के चेहरे के भावों को पढ़ लिया था। साक्षी ने मंथन से धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें एटलीस्ट उसे अपने दिल की बात तो बता ही देनी चाहिए थी, फिर डिसीजन उसके ऊपर था कि वो आरव को सिलेक्ट करती या तुम्हें। मुझे मौका नहीं मिला और वो इतनी जल्दबाजी में आरव से शादी कर रही है, इसका मतलब उसने सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है दी, और मैं आयु की खुशी में खुश हूँ। प्लीज़ आप ये किसी को मत कहिएगा, आई डोंट वॉन्ट कि कोई परेशान हो, मंथन ने जवाब दिया। उसने आयु और अपनी डील के बारे में किसी को नहीं बताया था। साक्षी ने उसकी बात पर हामी भरी और आगे कहा, आयु तो आरव को अनु की मौत का जिम्मेदार समझती थी ना, फिर शादी के लिए कैसे तैयार हुई? क्या उन दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई है? सब क्लियर हुआ है तभी आज दोनों साथ हैं, चलिए दी एंजॉय करते हैं, ना कि ओवरथिंकिंग करके खुद को स्ट्रेस्ड, मंथन ने हल्का मुस्कुराकर कहा। साक्षी ने हामी सिर हिलाया और फिर आयु के पास चली गई। वहीं आरव और आयु एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और बाकी की फैमिली उनके पास। गौरवी जी आयु के पास आईं और उसके कान के पीछे काला टीका लगाते हुए बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो, भगवान तुम दोनों की जोड़ी को हर बुरी नज़र से बचा कर रखें। वो आरव की सगाई से बहुत खुश थीं। आयु ने उनके पैर छुए तो गौरवी जी ने उसे गले लगा लिया। हमेशा खुश रहो और मेरे आरव से ऐसे ही प्यार करती रहना, गौरवी जी ने आयु को आशीर्वाद देते हुए कहा। चलिए सगाई की रस्में शुरू कर लेते हैं, जय जी ने मरमी से कहा। गौरवी जी ने उनकी बात पर हामी भरी। पहले तारा और सिमरन ने आयु और आरव को आशीर्वाद देते हुए एक रस्म निभाई, उसके बाद गौरवी जी ने। अब दोनों रिंग एक्सचेंज करने जा रहे थे। सब लोगों के साथ होने की वजह से आरव आयु से खुलकर बात नहीं कर पा रहा था, इस वजह से उसका मुंह बना हुआ था। जैसे ही एक दूसरे को अंगूठी पहनाने के लिए आयु आरव के बिल्कुल पास आई तो उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा मुंह बना हुआ है, तुम इस एंगेजमेंट से खुश नहीं हो क्या? तुम चाहो तो पीछे हट सकते हो। आयु की बात सुनकर आरव ने आइज रोल की और जवाब में कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? जिस दिन का मैंने इतने दिनों से बेसब्री से इंतजार किया है उसके लिए खुश नहीं होऊंगा क्या? तो फिर मुंह क्यों फुला रखा है? मैं क्या अच्छी नहीं लग रही? कहीं कोई कमी रह गई क्या? आयु ने पूछा। नहीं, कोई कमी नहीं रही। तुम तो मुझे तब भी खूबसूरत लगती हो जब तुम ओटी से बाहर अपनी डॉक्टर की ड्रेस में निकलती हो। काफ़ी बार तुम्हारे हाथ और ड्रेस पर ब्लड लगा रहता है, तब भी मुझे तुम उतनी ही प्यारी लगती हो। जबकि आज तो तुमने दी आरव खुराना की डिज़ाइन की हुई ड्रेस पहन रखी है, तो खूबसूरत लगना ही है, आरव ने काफ़ी प्राउडली जवाब दिया। उसकी बात सुनकर आयु हल्का मुस्कुराकर बोली, हाँ, तुम खुद की तारीफ करने का कोई मौका छोड़ना मत। आरव और आयु रिंग पहनाने के बजाय एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन्हें इतना क्लोज देखकर जहां सबको खुशी महसूस हो रही थी, वहीं जयजी और ताराजी उन्हें गुस्से में देख रहे थे। ताराजी ने कहा, बातें तुम दोनों को पूरी उम्र ही करनी है, और अब तो हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले हो, कम से कम रस्में तो टाइम से कर लेते हैं ना। अपनी बात खत्म करके वो हल्का सा मुस्कुरा दी ताकि सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो। आरव ने उनकी बात पर हामी भरी और फिर आयु से कहा, तुम्हारी मॉम ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, परफेक्ट सास बनने वाली हैं ये मेरी, थैंक गॉड तुम मेरे घर पर रहने के लिए आ रही हो। अगर मैं यहाँ आया तो हम दोनों की रोज़ फाइट होती और घर में अच्छा खासा ड्रामा लगा रहे। जवाब में आयु बस मुस्कुरा कर रह गई। उसके बाद आरफ ने आयु को रिंग पहनाई और फिर आयु ने आरफ को। सब क्लैप करने लगे। रिंग एक्सचेंज करने के बाद अयान ने तेज आवाज में कहा, एक रोमांटिक डांस तो बनता है, इसके बिना सगाई अधूरी रहेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी हमारे लव बर्ड्स को बातें करने का चांस नहीं मिला, तो रिंग एक्सचेंज करने से पहले ही बातें करने लगे। उनके स्पेशल दिन पर इन्हें थोड़ा स्पेशल टाइम देना तो बनता है, सिमरन ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा। मैं म्यूजिक प्ले करता हूँ, रुद्र ने कहा और म्यूजिक सिस्टम की तरफ चला गया। भले ही सगाई में कम लोग इन्वाइटेड थे, लेकिन उसका इंतजाम बिल्कुल रॉयल तरीके से किया गया था। गार्डन की डेकोरेशन काफ़ी लैविश थी, जहाँ डांस फ्लोर के साथ सारी अरेंजमेंट अवेलेबल थी। एंगेजमेंट सेरेमनी का फोटोशूट करने के लिए आरव ने अपनी ही कंपनी के हेड फोटोग्राफर को हायर किया था, ताकि उनकी एंगेजमेंट की न्यूज़ बाहर ना जाए। सिक्योरिटी का काम कबीर देख रहा था। तुम बच्चे लोग इंजॉय करो, हम बड़े आपस में आगे की बात करते हैं, गौरवी जी ने कहा और फिर जय जी और तारा जी के साथ दूसरी तरफ आ गई। वहाँ वो लोग शादी के बाकी अरेंजमेंट के बारे में डिसाइड कर रहे थे। आरव और आयु डांस फ्लोर पर थे। आरव और आयु पहले भी एक दूसरे के साथ डांस कर चुके थे, लेकिन आज कुछ अलग था। आज उनकी सगाई हो चुकी थी, इसलिए आरव ने आयु को अपने बिल्कुल करीब कर रखा था। इतना करीब कि उन दोनों की नोज आपस में टच हो रही थी। दोनों ने एक दूसरे को कमर से पकड़ रखा था और इस बीच म्यूजिक प्ले हुआ। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। आयु डांस करते हुए आरव की गहरी नीली आंखों में देख रही थी, तो वहीं आरव भी इंटेंसली आयु के एम्बर आइज में देख रहा था। डांस करते हुए उसने आयु की पीठ को अपने सीने से लगाया। आरव के पास आने पर आयु के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूं सूना सा एक आसमां महताब तू, ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है।
तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तेरे बिन अब तो ना जीना गवारा।
फिर आरव अपने घुटने पर बैठा और आयु का हाथ पकड़कर लिरिक्स के साथ सिंग किया।
मैंने छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते, बस आया हूँ तेरे पास रे, मेरी आँखों में तेरा नाम है पहचान ले, सब कुछ मेरे लिए तेरे बाद है, सौ बातों की एक बात है, मैं ना जाऊँगा कभी तुझे छोड़ के ये जान ले। ओ करम खुदाया है तेरा प्यार जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा।
डांस करने के बाद आरव ने आयु के होठों पर हल्का सा किस किया। उन्हें एक साथ देखकर सबके फेस पर स्माइल आ गई, तो वहीं मंथन थोड़ा परेशान हो गया और दूसरी तरफ चला गया। सब आरव और आयु के साथ बिजी थे। मंथन डांस फ्लोर एरिया से निकलकर कॉकटेल एरिया के पास खड़ा था। वहां पर उसके अलावा कोई और भी था और वो अयान की बहन रायशा थी। अनुष्का की मूवी में उसका रोल करने की वजह से रायशा को पिछले दिनों काफ़ी हेट मिल रही थी, इसलिए वो परेशान थी। जैसे ही उसने अपने सामने मंथन को देखा तो उसने उससे कहा, मैंने आपको कहीं देखा है लेकिन अब याद नहीं आ रहा कहाँ देखा। रायशा की आवाज़ सुनकर मंथन ने भी उसकी तरफ देखा। वो उसे देखते ही पहचान गया और नजरें घुमाते हुए कहा, लेकिन मुझे सब अच्छे से याद है तुम कौन हो। रायशा को वहाँ देखते ही मंथन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने उसकी तरफ सर्द निगाहों से देखकर कहा, कितना भी कोशिश कर लो लेकिन उसकी जगह कभी नहीं ले पाओगे। अनुष्का बेस्ट थी, पता नहीं लोग क्यों उसके जैसे बनने का कोशिश करते हैं जबकि उसके आसपास तक नहीं होते। बोलते हुए मंथन ने रायशा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी बातें रायशा को हर्ट कर रही थी। तुम इस तरह मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते, मैं यहाँ तुमसे कितना तमीज से बात कर रही थी, रायशा ने नम आंखों से कहा। अगर खुद की इज्जत करवानी है तो जो कर रही हो वो करना छोड़ दो, बॉलीवुड में अपना करियर बनाना ही था तो नई शुरुआत करती, ऐसे किसी की सालों से मेहनत करके बनाई हुई पोजीशन को लेकर क्या फ़ायदा, तुम्हें तो खुशी हुई होगी ना उसके मरने पर, मंथन ने सिर हिलाकर कहा। मंथन की बातों से अब रायशा को भी गुस्सा आ गया था। वो चिढ़कर बोली, देखो मिस्टर, तुम जो भी हो अब बहुत ज्यादा रूड हो रहे हो। तुम परेशान लग रहे थे इस वजह से मैंने तुमसे बात करने की पहल की, लेकिन तुम तो उल्टा मुझे ही सुना रहे हो। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर मेरी परेशानी कम करना चाहती हो तो मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मंथन ने रायशा को जवाब दिया और फिर खुद ही वहां से चला गया। उसकी इस हरकत पर रायशा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। बिहेव तो ऐसे कर रहा है जैसे कहीं के सीएम का बेटा हो, बोलते हुए रायशा की आंखें बड़ी हो गईं। उसे याद आ गया था उसने मंथन को कहाँ देखा था। तब उसने हैरानी से कहा, ये तो दिल्ली के सीएम मिस्टर निशांत आहूजा का बेटा है, क्या इसी वजह से ये इतना टेंट्रम दिख रहा है? रायशा ने मंथन को पहचान लिया था और अब उसकी बात का जवाब देने के लिए उसके पीछे जा रही थी।